سورت النجم آیت نمبر 36 سے ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے مراد تورات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تو آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں، اور یہ آگے جو ہے وہ 18 آیات ہیں۔ اور ان کے اندر جو عملی احکامات ہیں ان کا تعلق سابقہ آیات سے بھی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ سابقہ آیات میں سے خاص طور پر یہ پچھلی جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 33 سے 35 تک، جس میں آخرت سے غفلت کا ایک کردار آپ نے پڑھا تھا ولید بن مغیرہ کے بارے میں، اور ولید بن مغیرہ جو تھا وہ جو مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا تھا، اور اس کے دوست نے جو مشرک دوست تھا جب اس کو یہ کہا کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو عذاب آخرت جو ہے وہ تمہارے حصے کا میں اپنے ذمے لے لوں گا، تو اس کے نتیجے میں ولید نے کیا کیا تھا کہ وہ مشرک دوست کی بات مان لی۔ اب یہاں پر اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور دوسری طرف جو اہل کتاب تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے تو ان سے بھی تمہارا ملنا جلنا رہتا ہے، اور ان کی تعلیمات کیا تھیں، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ سوال سامنے رکھا ہے، ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوالیہ انداز ہے بڑا ہی زبردست، ام لم ینبا، کیا نہیں وہ بڑی خبر پہنچی، بما اس کی جو، فی صحف موسیٰ و ابراہیمہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں، الذی وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ تو جہاں تک بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی، تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، تورات نہیں ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ تورات ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جزا اور سزا کے متعلق کیا قانون نازل کیا تھا، کیونکہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوتے رہتے تھے، تو صحیفے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور پھر تورات بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا تورات ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے، کیونکہ ان پر کوئی جامع کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اصولی باتیں بتائیں وہ قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ایک تو سورۃ نجم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور دوسرا سورۃ اعلیٰ میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ خاص صفت کیا تھی، الذی وفا، کہ ابراہیم تو وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وفا کا حق ادا کر دینا اس کے کیا معنی ہے، وہ شخص جس نے اپنے رب کے ہر حکم کی تعمیل کا حق ادا کیا، ہر وعدے کو پورا کیا، ہر امتحان میں جو ہے وہ پورا اترا۔ آپ پڑھ چکی ہیں سورۃ البقرہ آیت 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ سب پوری کر دکھائی۔ پھر آپ دیکھیں کہ وفا جو ہے اس میں ان کے رسالت اور نبوت کے فرائض بھی شامل ہیں، اور عام جو لوگوں کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لوگوں کی جو اصلاح کی ہے وہ بھی شامل ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، پھر پوچھا تم جانتے ہو کہ وفا کا مطلب کیا ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دن کے اعمال کی تکمیل اس طرح کر دی کہ شروع دن میں 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ لیں۔ اسی طرح ترمذی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، تو میں آخر دن تک تیرے سارے کاموں کی کفالت کروں گا، تیرے سارے کاموں کا ضامن بن جاؤں گا۔ اور اسی طرح ہمیں ایک اور روایت بھی جو معاذ بن انس جس کے راوی ہیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو الذی وفا کا خطاب کیوں دیا؟ کہا، وجہ یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح شام، جب صبح ہوتی تھی جب شام ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیاً وحین تظہرون، یہ صبح شام کے اذکار میں بھی یہ دعا جو ہے وہ شامل ہے۔ تو پیاری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام کا جو خطاب ہے، جو ٹائٹل ہے، جو لقب ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور یہ ٹائٹل دینے والا کوئی عام نہیں ہے، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، بلکہ یہ ٹائٹل دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اہل مکہ اپنا پیشوا مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں بھی جزا اور سزا کا قانون موجود تھا۔ آگے جزا اور سزا کا جو قانون ہے اس کے بارے میں آیات ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى، آیت نمبر 38 سورۃ النجم، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے، آیت نمبر 38۔ ہمارے سامنے 3 اہم اصول جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ نمبر 1، اب آپ کو تزیرو، وازرتن، وزرا، ان سب کا مادہ آتا ہے نا، آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، و ز را، یہ ان کا مادہ ہے، اور اس کے معنی ہیں بوجھ کے، بوجھ۔ تو تزیرو جو ہے یہ ورب ہے، فیل ہے، وازرتن جو ہے یہ اسم ہے، نون ہے، اور جو وزرا ہے، وزرا یہ بھی نون ہے، یہ اسم ہے۔ تو اللہ تزیرو، تو اور تزیرو، وازرتن، وزرا، سب کا روٹ کیا ہے؟ وزارا، بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تزیرو کے معنی ہیں بوجھ اٹھانے والا، وازرتن جو ہے یہ سوری آپ اس کی دوبارہ تصحیح کر لیں کہ تزیرو جو ہے یہ بوجھ اٹھائے گا، کیونکہ یہ ورب ہے نا، تو بوجھ اٹھائے گا، وازرتن بوجھ اٹھانے والا، جیسے فائل ان کے وزن پر آپ سمجھیں اس کو، اور وزرا جو ہے یہ بوجھ کو کہتے ہیں۔ تو عمل کا پہلا اصول کیا سامنے آتا ہے کہ ہر شخص خود اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے۔ جب کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن، آخرت کے دن بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو اس کے معنی ہے کہ یہ جو ولید بن مغیرہ کو اس کے مشرک دوست نے کہا کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو، جو دل چاہے کرتے رہو، قیامت کے دن تمہارے عذاب کا بوجھ میں اٹھا لوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی۔ نمبر 1، ہر شخص خود اپنے عملوں کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 2، ایک شخص کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی، کیونکہ عمل اس نے کیا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص चाहे कि किसी दूसरे शख्स के अमल की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले ले, तो फिर भी असल मुजरिम जो है उसको छोड़ा नहीं जा सकता और उसकी जगह सजा देने के लिए किसी और को मुंतखब नहीं किया जा सकता। वह अल्ल लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि नहीं है इंसान के लिए इल्ला मगर मा सआ, मगर वो जो उसने सही की है। इससे भी तीन अहम उसूल सामने आते हैं। नंबर एक, हर शख्स जो कुछ भी पाएगा अपने अमल का फल पाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जो उसने कोशिश की है। नंबर दो, एक शख्स के अमल का फल दूसरा नहीं पा सकता, क्योंकि इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने किया है। नंबर तीन, कोई शख्स बगैर कोशिश के, बगैर अमल के उसे कुछ भी नहीं मिल सकता। अच्छा, अब आप देखें कि इन उसूलों की रोशनी में अब हम ये देखते हैं कि क्या एक शख्स का अमल दूसरे शख्स को नफा दे सकता है, क्या एक शख्स दूसरे शख्स के लिए या उसके बदले अगर कोई अमल करे तो क्या उसकी तरफ से कबूल किया जा सकता है, और क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स अपने अमल के अजर को दूसरे की तरफ मुंतकिल कर सके। ये तीन सवाल हैं जो आमतौर पर लोगों के सामने आते हैं और इनको हम देख लेते हैं। इस सिलसिले में एक बहुत ही शिद्दत का नुक्ता नजर है मोतजिला का। मोतजिला जो है ये हद से गुजरने वाले लोग हैं, और मोतजिला ये कहते हैं कि एक शख्स की कोशिश दूसरे के लिए किसी हाल में नाफे नहीं हो सकती। इसके बिलखिलाफ, इससे हटकर अहले सुन्नत एक शख्स के लिए दूसरे की दुआ को बिल इत्तफाक नाफे समझते हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात का नुक्ते नजर क्या है कि एक शख्स जब दूसरे के लिए दुआ करता है तो वो दुआ जो है वो दूसरे को फायदा देती है, और इस पर सब मुत्तफिक हैं और ये कुरान से साबित है। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल है कि क्या एक शख्स अपने किसी नेक अमल को दूसरे के लिए जो है वो दे सकता है, दूसरे की तरफ मुंतकिल कर सकता है, क्या उसका नेक अमल जो है वो दूसरे के लिए नाफे हो सकता है, तो इसके दरमियान उसूलन तो इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तफसीलात में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। मैं उसमें से चंद एक बातें आपके सामने इस वक्त रख देती हूं जो उसूली सी बातें हैं। अब आप देखें कि इसाले सवाब किसे कहते हैं, कि एक शख्स कोई नेक अमल करके अल्लाह से दुआ करे कि इसका अजर व सवाब किसी दूसरे शख्स को अता कर दिया जाए। इस सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खालिस बदनी इबादत, मसलन नमाज, रोज़ा, तिलावत कुरान, इसका सवाब दूसरे को नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता जो माली इबादत हैं जैसे सदका और या फिर माली और बदनी इबादत का जो मजमुआ है जैसे हज का सवाब, ये दूसरे को पहुंच सकता है। और वो क्यों ये कहते हैं, वो दलील देते हैं कि असल वजह ये है कि एक शख्स का अमल दूसरे के लिए नफामंद नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह ने फरमाया है ना। अच्छा, हनफिया, जो हनफिया के फुका हैं वो कहते हैं कि इबादत की तीन किस्में हैं। एक खालिस बदनी इबादत है जैसे नमाज, दूसरे खालिस माली इबादत है जैसे ज़कात, तीसरे माली और बदनी इबादत है जैसे हज। वो कहते हैं जो नमाज है ना, इसमें किसी को सवाब नहीं पहुंचाया जा सकता, यानी एक शख्स की तरफ से दूसरा शख्स उसके हिस्से की नमाज नहीं पढ़ सकता। इस तरह तो अमीर लोग जो थे वो अपने नौकरों से, गुलामों से कहते कि अच्छा जरा मेरी फजर की नमाज पढ़ दो, मेरी इशा की नमाज पढ़ दो, या फिर ये कि जैसे वालदैन थके हुए हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो कहें अच्छा बच्चों तुम मेरी नमाज पढ़ दो, या उस्ताद शागिर्दों को कहे कि अच्छा मेरी खिदमत करो, जरा मेरी नमाजें पढ़ दिया करो। तो वो कहते हैं कि एक शख्स की तरफ से दूसरा शख्स जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकता, और इसमें इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी इसमें जो है वो मुत्तफिक हैं कि बदनी इबादत जिसमें नमाज भी है, रोज़ा भी है और तिलावत कुरान भी है, ये दूसरे को इसका अजर नहीं पहुँचाया जा सकता। और लेकिन जो हनफिया के फुकहा हैं वो कहते हैं कि मसलन नमाज जो है वो किसी के लिए नहीं पढ़ी जा सकती। दूसरी किस्म में मसलन माली इबादत ज़कात, इसमें वो कहते हैं कि नियाबत हो सकती है कि मसलन ज़कात किसी की कोई दूसरा दे सकता है। मसलन बीवी पे ज़कात फ़र्ज़ है और उसके जेवर की ज़कात उसका शौहर दे सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि एक शख्स नेकी करके अल्लाह से कहता है कि इसका अजर व सवाब किसी दूसरे को दे दिया जाए, क्योंकि ज़कात मियाँ पे तो फ़र्ज़ नहीं है, बीवी पे फ़र्ज़ है, लेकिन उसका शौहर उसकी ज़कात जो है वो दे देता है। फिर इसी तरह तीसरी किस्म है जिसमें माली और बदनी इबादत जो है वो इकट्ठी हो जाती है, और इससे मुराद है जैसे हज। तो इस सिलसिले में भी जो हनफी फुकहा हैं वो ये कहते हैं कि इस सिलसिले में भी अजर उस सूरत में किसी को दिया जा सकता है, यानी इस साले सवाब हज का दूसरे को पहुंचाया जा सकता है, अगर कोई शख्स जिसकी तरफ से हज बदल किया जा रहा है या उमरा किया जा रहा है वो अपना फरीजा खुद अदा करने से आर्जी तौर पर नहीं बल्कि परमानेंट मुस्तकिल तौर पर आजिज हो। हज बदल ऐसे शख्स की तरफ से हो सकता है जो खुद हज के लिए जाने पर कुदरत ना रखता हो और ना उसको ये उम्मीद हो कि वो कभी इस काबिल हो सकेगा, और मालिकी और शाफी जो हैं वो भी इसके कायल हैं। अलबत्ता इमाम मालिक हज बदल के लिए ये शर्त भी लगाते हैं कि अगर बाप ने वसीयत की हो कि उसका बेटा इसके बाद इसकी तरफ से हज करे तो हज बदल कर सकता है। अच्छा, अब मैं आपको ये तो थी स्कॉलर्स की उलमा की राय, अब मैं आपको चंद एक हदीसें आपके सामने पेश करती हूँ जिससे आप को अंदाज़ा होगा कि उलमा जो ये राय देते हैं तो उनके पास जो है वो क्या चीज़ है जिसकी बिना पर वो राय देते हैं। एक तो कुरान की आयात वो सामने रखते हैं, जैसे यही दोनों आयात हैं और इसके अलावा भी कुरान की आयात हैं। और इस सिलसिले में आप एक बात और याद रखें कि बाज़ इंसान के अमाल ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहता बल्कि उसके असरात इंसान की ज़िंदगी के बाद भी बाकी रहते हैं, उनकी सज़ा या जज़ा उसे बाद में मिलती रहती है और उसके अमालनामे में उसका अजर व सवाब लिखा जाता रहता है। इस सिलसिले में अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो रवायत करते हैं, ये इमाम मुस्लिम जो है उन्होंने इसको नकल किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान मर जाता है तो इसका अमल ख़त्म हो जाता है मगर तीन चीज़ों का सवाब जारी रहता है, एक सदका जारिया, दूसरे इल्म का जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरे नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती रहे। हदीस नंबर 2, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह नो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी जुल्म से नाहक मारा जाता है इसके गुनाह का एक हिस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पहले कातिल काबिल पर डाला जाता है, उसके नामा अमाल में दर्ज किया जाता है। दूसरी रवायत के अल्फाज ये हैं कि इसके खून के गुनाह का एक हिस्सा उस पर डाला जाता है क्योंकि रुए जमीन पर नहक खून की रस्म इसने कायम की। इसे बुखारी ने रवायत किया है। पहला कत्ल उसने किया था, बुराई की इब्तदा उसने की थी, और इसलिए जब तक दुनिया में कत्ल होता रहेगा तो ये गुनाह का नफा है जो उसके नामा माल में दर्ज होता रहेगा। फिर इसी तरह तीसरी हदीस है, मुनजर बिन जरीर कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इस्लाम में कोई नेक तरह डाली इसके लिए अपने अमल का भी सवाब है और जो लोग इसके बाद अमल करें उनका भी सवाब है बगैर इसके कि इन लोगों का सवाब कुछ कम हो। और जिसने इस्लाम में कोई बुरी तरह डाली, यानी इस्लाम में जैसे किसी सुन्नत को जिंदा कर दिया, इसी तरह कोई बुरी रस्म इस्लाम में किसी ने डाल दी, और जिसने इस्लाम में कोई बुरी तरह डाली इस पर इसके अपने अमल का भी बोझ है और उन लोगों का भी जो इसके बाद इस पर अमल करें बगैर इसके कि इन लोगों का बोझ कुछ कम हो। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। यह हदीस नंबर 3 की मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे मसलन आप में से कोई पब्लिक स्कूल में जॉब करती है और उसके स्कूल में जो है वो स्कार्फ के साथ कोई नहीं आता था, जिलबाब के साथ कोई नहीं आता था, उसने उस स्कूल में उसकी इब्तिदा कर दी, टीचर है या वो तालिबे इल्म है। इसी तरह डॉक्टरी का पेशा है और उसमें जो है वो कोई डॉक्टर है और वो अपनी किसी स्टेट में, अमेरिका में या कहीं भी, वो जो है वो स्कार्फ के साथ, जिलबाब के साथ वहाँ पे जो है वो काम शुरू कर देती है, जॉब शुरू करती है, पढ़ाई शुरू करती है। तो जब तक वहाँ पे लोग ये काम करते रहेंगे तो उसके नामेमाल में नेकी लिखी जाती रहेगी। इसी तरह अगर कोई जैसे पब्लिक स्कूल हैं और वहाँ पे कोई यूथ के हमारी लीडरशिप है, लड़के हैं, वहाँ पे वो जुमे की नमाज़ की इब्तिदा कर देते हैं, जुमा पढ़ाना शुरू कर देते हैं और जगह लेते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, एक टीम बनाते हैं, उनको जगह मिल जाती है और फिर जुमा वहाँ पे शुरू हो जाता है। अब वो चले जाते हैं, साल हा साल मसलसल अब जुमा पढ़ा जाता जा रहा है, हत्ता कि वो फौत भी हो जाते हैं तो उनके नामाए माल में इसका अजर भी लिखा जाता रहेगा। या आप देख लें कि ये मगरिब की दुनिया में इस्लाम कैसे आया। ताजिर आए थे ना, सबसे पहले ये यूरोप साइड पर ताजिर आए थे तिजारत करने, उनकी ईमानत, उनकी दयानत, उनकी सच्चाई, और इस्लाम इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अब आप देखें कि इस्लाम और फैलता जाएगा लेकिन उनके नामाए माल में भी इसका हिस्सा जो है वो लिखा जाता रहेगा। इसी तरह बुराइयों के बारे में, मसलन अगर आपकी खानदान में, आपकी फैमिली में मिक्सिंग पार्टीज का बहुत रवाज है, आप क्या करती हैं, आप सेपरेट कर देती हैं, आपने अपनी फैमिली के अंदर एक नई चीज की इब्तदा की। बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता, लेकिन जब आप इब्तदा कर लेती हैं तो फिर और लोग शुरू में बहुत बातें करते हैं, सभी बातें करते हैं, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये कि फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको नेकी को फैशन समझ कर ही कबूल कर लेते हैं या नेकी समझ कर कबूल करते हैं, लेकिन आपके नामा माल में इसका अजर जो है वो लिखा जाता रहेगा। लेकिन अगर कोई बेहुदा फैशन की इब्तदा करता है, मिक्सिंग की करता है और गलत चीज़ों की, तो फिर उसके भी नामा माल में गुनाह का जो बदला है या उसका जो उसकी जजा है वो लिखी जाती रहेगी। अच्छा, इसी तरह जो है वो, अब मैं आपके सामने वो अहदीस रखती हूँ कि जिससे पता चलता है कि कैसे जो माली इबादत है उसकी अजर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस सिलसिले में बुखारी और मुस्लिम की रवायत है और इसके कई रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मेंढे लेकर एक अपनी और एक अपने घर वालों की तरफ से कुर्बान किया और दूसरा अपनी उम्मत की तरफ से। अब आप देखें कि ये माली कुर्बानी है ना, माल की इबादत है, तो आपने अपने लिए भी किया, अपने घर वालों के लिए भी, यानी एक जो था और दूसरा तमाम अपनी उम्मत की तरफ से, तो इसका मतलब है कि ये अजर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिर इसी तरह मुस्लिम, बुखारी, मुसनद अहमद, अबू दाऊद, नसाई की रवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया है, मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें बात करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर सदका करने के लिए कहती, अब अगर मैं इनकी तरफ से सदका करूँ तो क्या इनके लिए अजर है? फरमाया, हाँ। अब देखें, सदका भी माली इबादत है तो इसमें प्यारे रसूल ने इजाज़त दी। इसी तरह मुसनद अहमद की रवायत है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की ये रवायत है कि इनके दादा आस बिन वाइल ने जमाने जाहलियत में 100 ऊंट ज़िबा करने की नज़र मानी थी। इनके चचा हशाम बिन आस ने अपने हिस्से के 50 ऊंट ज़िबा कर दिए। हज़रत अमर बिन आस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे बाप ने तौहीद का इकरार कर लिया था तो तुम इनकी तरफ से रोज़ा रखो या सदका करो, वो इनके लिए नाफे होगा। इसका मतलब है कि अगर वो ईमान नहीं लाए थे तो फिर फायदा नहीं है। फिर इसी तरह हमें एक और हदीस मिलती है, ये मुसनद अहमद, अबू दाऊद, नसाई और इब्ने माजा ने रवायत इसको किया है कि हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, क्या मैं इनकी तरफ से सदका करूं? आपने फरमाया, हाँ। और इसी तरह हमें और भी जो है वो रवायात से हदीस मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत की तरफ से सदका करने की इजाज़त दी है। दारे कुतनी में है, एक शख्स ने हुजूर से पूछा, क्या मैं अपने वालदैन की खिदमत उनकी जिंदगी में कि मैं अपने वालदैन की खिदमत उनकी जिंदगी में तो करता हूँ, इनके मरने के बाद कैसे करूँ? आपने फरमाया, ये भी इनकी खिदमत ही है कि मरने के बाद तू अपनी नमाज के साथ इनके लिए भी नमाज पढ़े और अपने रोज़ों के साथ इनके लिए भी रोज़े रखे। और इसी तरह हमें एक और रवायत मिलती है कि हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स का कब्रिस्तान पर गुजर हो और वो 11 दफ़ा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर इसका अजर मरने वालों को बख्श दे तो जितने मुर्दे हैं उतना ही अजर अता किया जाएगा। तो बहरहाल ये चंद एक अहदीस हैं और जिससे हमें ये बात पता चलती है कि एक तरफ तो ज़्यादातर हदीसें जो हमने पढ़ी हैं ये माली इबादत के बारे में है, आखिरी हदीस जो है ये रोज़े के बारे में है और नमाज के बारे में है। और इस सिलसिले में मैं आखिर में भी आपको बताऊंगी कि आपने जो है वो बाद में जो रोज़ा रखना है जो खालिस बदनी इबादत है इससे आपने जो है वो मना भी कर दिया था। यानी दोनों तरह से हमें बात मिलती है कि आपने इजाज़त भी दी और आपने मना भी कर दिया। अच्छा, बल्कि मैं अभी आपको बता देती हूँ, जैसे मसलन मसलन जैसे रोज़ा रखने के बारे में ही हमें ज़्यादा अहदीस मिलती हैं कि कबीले जुहैना की एक औरत ने रसूल से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा ने रोज़े की नज़र मानी थी और वो पूरी किए बगैर मर गई, तो क्या मैं इसकी तरफ से रोज़ा रख सकती हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी तरफ से रोज़ा रख ले। बुखारी मुस्लिम मुस्नद अहमद नसाई अबू दाऊद। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह की यह रवायत कि एक औरत ने अपनी माँ के मुतलिक पूछा कि उसके ज़िम्मे एक महीने या फिर दो महीने के रोज़े थे तो क्या मैं ये रोज़े अदा करूं? आपने उसको भी इजाज़त दे दी। सही मुस्लिम मुस्नद अहमद तिरमिज़ी अबू दाऊद। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत के हुजूर ने फरमाया जो शख्स मर जाए और इसके ज़िम्मे कुछ रोज़े हों तो इसकी तरफ से इसका वली वो रोज़े रख ले। बुखारी मुस्लिम मुस्नद अहमद। और आप देख लें कि रोज़े जो हैं ये खालिस बदनी इबादत है ना। अच्छा, ये जो अहदीस हैं इन अहदीस की बिना पर इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफ़ी जो हैं वो ये कहते हैं कि मैयत की तरफ से जो है रोज़ा नहीं रखा जा सकता। क्यों? वो ये कहते हैं कि सिर्फ इस सूरत में ये ऐसा किया जा सकता है अगर मरने वाले ने इसकी नज़र मानी हो और वो उसे पूरा न कर सका हो। क्योंकि इन अहदीस में हमें क्या बात पता चलती है कि रोज़े की नज़र मानी थी या किसी के ज़िम्मे रोज़े थे और वो रूटीन में वो रोज़े रखने वाला था। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों ने नसाई में ये अल्फाज जो हैं उनको नकल किया है कि कोई शख्स किसी की तरफ से ना नमाज पढ़े और ना रोज़ा रखे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा का फतवा भी यही है कि अपने मुर्दों की तरफ से रोज़ा ना रखो बल्कि खाना खिलाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हों से अब्दुर्रज़ाक ने यही बात नकल की कि मैयत की तरफ से रोज़ा ना रखा जाए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो अहदीस हमें जो मिलती हैं जिसमें जो है वो बदनी इबादत में भी आपने इजाज़त दी, जैसे मैंने नमाज के बारे में भी एक बताई थी और इसी तरह ये रोज़ों के बारे में, तो इस सिलसिले में मुहद्दसीन ये कहते हैं, इसको आप नोट कर लें क्योंकि आम तालिब इल्म जो है जब दोनों तरह की अहदीसें पढ़ता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इस सिलसिले में मुहद्दसीन ये कहते हैं कि असल बात यह है कि बदनी इबादत में शुरू में नियाबत की इजाज़त थी। नियाबत होता है नायब बनाना, कि इब्तदा में आपने इसकी इजाज़त दी लेकिन आखिरी हुक्म यही करार पाया कि ऐसा करना जायज़ नहीं है, वरना किसी तरह ये मुमकिन नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सामने होते हुए फिर भी जो है वो ये बात सामने आती, मुहद्दसीन ये बात कहते और फुकहा ये कहते कि जो है वो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और रोज़ा नहीं रखा जा सकता। तो कहते हैं शुरू में ये बात जायज़ थी, बाद में इसे मना कर दिया गया। और एक और बात आप नोट कर लें, बहुत अहम है, इस सिलसिले में मुहद्दसीन और फुकहा ये कहते हैं कि ये जो किसी की तरफ से नेकी करना है जैसे हज करना है या और कोई नेकी का काम है, तो ये उन लोगों की तरफ से है जो खुद वो नेकी का काम करने के ख्वाहिशमंद हो, खुद उनकी अपनी नीयत हो और फिर वो मतलब ज़िंदगी ने साथ ना दिया या माजूरी हो गई और वो ना कर सके। मसलन हज, हज किसी पे फ़र्ज़ है और अमीर है साहिब हैसियत है जा सकता था मर्द है कि औरत, लेकिन सारी जिंदगी वो घूमने फिरने तो पेरिस भी चला गया और वाशिंगटन डीसी भी चला गया और यूरोप भी और दुनिया में वो घूमा, लेकिन उसको हज के फर्ज का एहसास नहीं था कि मैं हज को करूं। वो लह व लाब में और अपने मतलब खेलने कूदने में, रंगरलियां मनाने में मसरूफ रहा। तो फुकहा और मुहद्दसीन कहते हैं कि ऐसे शख्स की तरफ से खा कितने ही हजे बदल किए जाएं, वो उसको फायदा नहीं दे सकते। इसी तरह अगर कोई शख्स कर्जदार था, उसने किसी से कर्ज लिया और फिर उसको अदा नहीं किया और अपनी जिंदगी में मजे करता रहा और उसको एहसास नहीं था कि मैंने किसी का हक मारा है, और मरते दम तक उसका इरादा भी नहीं था मुझे कर्ज अदा करना है, और अगर कोई इसको एहसास भी दिलाता तो हंसी ठट्ठे मजाक में उड़ा देता। अब खा इसकी तरफ से उसके पीछे से उसके, चूंकि वो मकरूज मरा ना, अब उसकी कोई पाई पाई भी अदा कर दे तो अल्लाह ताला की निगाह में वो कर्ज मारने वाला शुमार होगा, क्योंकि उसकी अपनी ख्वाहिश नहीं थी और कर्ज अदा नहीं हो सका, उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। तो इस सिलसिले में दो बातें आप नोट कर लें कि ये जो किसी के लिए जो है वो नियाबत करना या नेकी करके उसको सवाब देना, जिसमें कुर्बानी है, हज है, सदका खैरात है, तो इस सिलसिले में जो है वो दो बातें बहुत अहम है कि वो खुद फर्ज की अदायगी का ख्वाहिशमंद हो, दूसरा ये कि वो माजूर हो। और जो लोग अभी भी जैसे किसी की तरफ से जो फौत हो जाते हैं वो रोज़ा वगैरह रखते हैं कि उनके जिम्मे थे और वो रखना चाह रहे थे या रख रहे थे तो डेथ होगी, तो वो ये दूसरी हदीसें जो मैंने आपको बताई हैं वो इसको कोट करते हैं। तो मैं आपके सामने तमाम नुक्ते नज़र रख रही हूँ ताकि उलमा का जो इख्तलाफ है वो भी आपके सामने आए और उसके साथ फिर आप जो है वो देखें कि यानी हमें अपनी अमली ज़िंदगी में क्या करना है। अच्छा, इस सिलसिले में इसाले सवाब के सिलसिले में तीन चार बातें और बहुत अहम हैं। उनमें से एक ये है कि इसाले सवाब उसी अमल का हो सकता है जो खालिस्तन अल्लाह के लिए हो और शरीयत के कवायद के मुताबिक हो। गैर अल्लाह के लिए या शरीयत के खिलाफ जो अमल किया जाए, इस पर खुद अमल करने वाले को भी किसी किस्म का सवाब नहीं मिल सकता, कुजा ये कि वो किसी दूसरे की तरफ जो है वो मुंतकिल किए जा सके। अब आप देख लें कि मसलन इसकी एक मिसाल देती हूँ जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही रवाज जिसने पाया है, जैसे रस्में कुल या पांचवां, दसवां, 40वां, फिर बरसी, फिर साल हर साल जो है वो मरने वाले की बरसी जो है मनाई जाती है। तो इस सिलसिले में आप ये बात याद रखिएगा प्यारी बहनों कि ये काम जो है ना ये अल्लाह के रसूल ने किए, ना करने को कहा, ना किसी सहाबी ने किए, किसी एक सहाबी ने भी नहीं किए। हालांकि वो तो ज्यादा इस बात के लिए जो थे वो उदास थे कि उनकी यानी उनके वालदैन फौत हो गए, अब उनकी खिदमत कैसे करें, और वो तो जो है वो अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। वो तो नेकी के मुतलाशी रहते थे, वो अपनी जानों को हथेली पर धर कर चलते थे, उनका ईमान तो जीता जागता था, लेकिन उन्होंने ये रस्में नहीं की जैसे आजकल हमारे यहाँ इन रस्मों का जो है वो बहुत रवाज है। तो इस सिलसिले में मतलब हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं इसको बड़ी धूमधाम से करते हैं। तो इस सिलसिले में जो है वो अगर मैयत के लिए कुछ सदका ही करना चाहते हैं उसकी औलाद और उसके घर वाले, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो हैं ऐसे ही सदका कर दें, पका के खाना दे दें, बकरे अल्लाह के रास्ते में दे दें, नियत कर लें। तो औलाद जो कुछ भी अपने वालदेन और बुजुर्गों के लिए करेगी तो अल्लाह ताला यानी औलाद दर औलाद, तो वो उसके लिए जो है इंशाल्लाह उसका अल्लाह ताला सवाब जो है वो पहुंचाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि जो लोग अल्लाह के यहाँ सवाले हों, नेक हों, मेहमान की हैसियत से हों, मुजरिम ना हों, इस सिलसिले में फुकहा ये कहते हैं कि मसलन आप जो दुनिया से जो चले गए, जो पीछे वाले हैं वो उनको जो है वो इसाले सवाब करके भेज रहे हैं जिन अमलों का और जो उनको पहुंच सकता है, अगर वो अल्लाह के नजदीक मुजरिम है, हवालात में बंद है, जेल के अंदर हैं, उनको फिर सवाब जो है वो नहीं पहुंच सकता, वो लौट कर वापिस भेजने वाले की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही है जैसे आप किसी को मनी ऑर्डर भेजते हैं, अगर उस एड्रेस पर कोई मौजूद नहीं है तो आपका मनी ऑर्डर आपको वापस मिल जाता है। और इसी तरह जैसे जेल में आप किसी के लिए खाना या कपड़े भेजते हैं जो आपके अपने हैं, और वो जो जेल का निगरान है वो उनको आगे नहीं जाने देता, क्योंकि जेल के अंदर वो मुजरिम है और वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, वो डाकू है, वो जो भी उसने गुनाह किया है, जो भी उसने गलती की है, तो उसकी वजह से उसको तो किसी किस्म की कोई सहूलत मिल ही नहीं सकती। पीछे वाले कितने ही क्यों ना उसके लिए चीजें, पैसे, खाने, कपड़े और सोफा और बिस्तर और रोशनी का इंतजाम क्यों ना उसके लिए करना चाहें और भेजना चाहें, बहुत ही बेचैन हो, बहुत ही परेशान हो, लेकिन वो जो जेल है उसके अंदर वो मुजरिम है। तो इस सिलसिले में फुकहा ये कहते हैं कि असल बात यह है कि जिसको भी आप भेज रही हैं तो उसकी अल्लाह के नजदीक हैसियत क्या है, वो अल्लाह के नजदीक मुजरिम है, वो हवालात में बंद है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है। फिर एक और अहम बात यह है कि नेकी का सवाब तो पहुंचाया जा सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि आप गुनाह करके उसका अजाब किसी को बख्श दें कि वो उसको पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसी तरह एक और अहम बात है, एक होता है कोई नेकी और नेकी करके उसका सवाब देना, दूसरा होता है कि नेकी के असरात। तो नेकी का सवाब तो आप दूसरे के लिए अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, अब अल्लाह की मर्जी है, चाहे तो उसको कबूल कर ले और चाहे तो उसको कबूल ना करे। और फिर इसमें भी लेकिन जो नेकी है उसके असरात नहीं आप उसको ट्रांसफर कर सकते, असरात और नताइज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मसलन जैसे आपको भूख लगी है, ठीक है, बहुत भूख लगी है और आप खाना खाना चाहती हैं, अब भूख तभी दूर होगी ना जब खाना आप खुद खाएंगी, और अगर कोई और खाना आपके हिस्से का खा ले तो क्या आपकी भूख दूर हो जाएगी? आपकी भूख दूर नहीं हो सकती। इसी तरह आपका वेट बहुत बढ़ गया है और आप चाहती हैं कि मेरा वेट कम हो जाए, तो कोई और एक्सरसाइज करे तो क्या आपका वेट कम हो जाएगा? कोई और परहेज कर ले क्योंकि कोई आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी वालदा है, जैसे मेरी वालदा है, उनको शुगर है, वो बेड पे हैं, वो चल नहीं सकती, अब मैं सोचूं कि मेरी वालदा बहुत तकलीफ में है तो चलो मैं उनकी तरफ से जो है ना वो मीठा भी छोड़ देती हूँ और मैं उनकी तरफ से परहेज करती हूँ, तो क्या उनकी शुगर थोड़ी हो जाएगी? उनकी शुगर कम नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वालदा खुद जो है वो परहेज नहीं करती। तो इस सिलसिले में फुकहा ये कहते हैं कि एक तो है कि आपने कोई नेकी की है तो उसका अजर आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप फलां को दे दीजिए, आपने दुआ कर दी, अब अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह चाहे दे दे, अल्लाह चाहे ना दे दे, क्योंकि अल्लाह को पता है वो नेक था या वो बुरा था या वो कैसा शख्स था। लेकिन हम अपने वालदैन के लिए और जो हमारे हम दुआ करना चाहें, दुआ तो सब दुआ तो आप किसी के लिए भी करें तो उसका अजर पहुंचता है, यानी किसी के लिए भी दुआ की जाए तो अल्लाह उसको कबूल करता है। लेकिन ये जो सारे मैंने आपको तफसील बताई, तो इस सिलसिले में जो है वो आप दरख्वास्त कर सकती हैं, फिर अल्लाह की मर्जी है कि उसको सवाब वालदैन को मिले या ना मिले, और जहां तक असरात हैं तो वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रांसफर जो असरात हैं वो सिर्फ जो है उस बंदे को ही मिलते हैं। मसलन आपने कुरान का कोर्स किया है, आपने दिन रात इसको पढ़ा है, आप एंड पर पहुंच रही हैं, जब आप कुरान पढ़ती थी, आयात पढ़ती थी, कभी आप रोती थी, कभी हंसती थी, कभी आंसू बहते थे, कभी दिल पिघलता था, और कभी जो है वो सब्र से गुजरी, कभी शुक्र से गुजरी, आप मुख्तलिफ हालात और असरात से गुजरी। सूरत नूर और अहज़ाब का क्विज ही देख लें, आपने मेहनत की, आपने कितने उसके फायदे समेटे, तो क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि मेहनत तो आप करें और आप फिर उसके बाद अल्लाह से दरख्वास्त करें कि सूरत नूर और अहज़ाब से जो कुछ मैंने सीखा है उसका उसके असरात मेरे टीचर को मिल जाएं, मेरे माँ बाप को मिल जाएं, मेरे दूसरे मोहसिनीन को मिल जाएं? तो वो ये कहते हैं कि ये नहीं मिल सकते। क्यों? उनका ये कहना है कि बिल्कुल यही मामला जो है वो नेक अमाल का भी है कि इनके असरात और इनके नताएज दूसरे को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, इसीलिए इसाले जजा नहीं कहते इसको, इसाले सवाब कहते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही मुश्किल सा टॉपिक है जिसके दरमियान उलमा में बहुत ही इख्तलाफ है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं जो उलमा की राय है और अहदीस की रोशनी में चंद उसूली और मोटी मोटी बातें आपके सामने पेश कर दूं। तो ये थी आयत नंबर 38 और आयत नंबर 39। 38 और 39 सूरत النجم ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अल्ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा व अल्लैसा व अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने सही की है। वह अनसा यह सऊफा युरा, और ये कि उसकी सही अन करीब देखी जाएगी। तो इसके माने ये हैं, सही के मतलब क्या है, उसकी सोचें, उसकी बातें, उसके आमाल, उसके इखलाक, उसके किरदार, उसके मामलात। सोचे जो हैं, अगर कोई अच्छी सोच होती है तो अल्लाह ताला उसका जो है वो अजर देते हैं, अगर कोई बुरी सोच होती है तो जब तक इंसान जो है वो गुनाह कर ना ले, जो बुरी बुरे गुनाह करने की नीयत थी, तो उस वक्त तक अल्लाह ताला उसका गुनाह नहीं देते। अगर बुरी नीयत कर ली थी, गुनाह तो नहीं अल्लाह देता, लेकिन अगर आप वो नीयत को छोड़ देते हैं तो अल्लाह उसका सवाब ज़रूर देता है। सुभान अल्लाह, प्यारी बहनों, अल्लाह बहुत ही मेहरबान है, बड़ा ही गफूर और रहीम है। और ये कि अनकरीब उसकी कोशिश देखी जाएगी, तो ये आयत भी दलील देती है कि आखिरत आकर रहेगी, जजा और सजा मिलकर रहेगी। सौफा युरा, अनकरीब जो है वो सही देखी जाएगी। सुम्मा युजज़ाहुल जज़ा अल औफा, और उसकी पूरी जजा उसे दी जाएगी। सुम्मा युजज़ाहु, फिर उसको जजा दी जाएगी, अल जज़ा अल औफा, पूरी जजा। इसके मानी है कि जर्रा बराबर भी जजा या सजा देने में जो है वो कमी नहीं की जाएगी, पूरा पूरा बदला अल्लाह ताला अता करेंगे। और अल्लाह के फरिश्ते मौजूद हैं जो के हिसाब किताब जो है वो कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं। अल्लाह जो है हर एक की नेकी का बदला भी उसको पूरा पूरा देगा, और हर एक की जो है वो बुराई का बदला भी उसको जो है वो पूरा पूरा देगा। दुनिया में उसने अच्छा काम किया था, बुरा किया था, छुप कर किया था, एलानिया किया था, जब कयामत का दिन आ जाएगा उस पर उसे पूरी पूरी जजा दी जाएगी। बहुत ही अहम यह आयत है, और यह आयत बहुत ही डराने वाली है कि जर्रा बराबर बुराई उसको भी अल्लाह ताला जो है माफ नहीं करेंगे, और जर्रा बराबर नेकी उसको भी अल्लाह ताला जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तो आप सोच लें कि अगर ये बात मेरे और आपकी सोचों में आ जाए और हमारे अमलों में आ जाए कि मैं एक एक अमल की अल्लाह के यहाँ जवाब दे हूँ, तो फिर जो है मेरी और आपकी ज़िंदगी संवर जाए। और प्यारी बहनों, क्या करना चाहिए, रोज़ाना रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ चंद घड़ियाँ, जब आप रात के वक्त बिस्तर पर लेटें, जब दिन भर की जो आपका अमल है एक मूवी बनकर आपके जो है वो जहन के अंदर वो मूवी के सीन जा रहे होते हैं, उस वक्त आप ज़रूर सोचा करें कि आज के दिन में मैंने अल्लाह की क्या क्या नाफरमानियाँ की, आज मैंने क्या क्या गलतियाँ की, ज़रूर इस पे सोचा करें। तो ये जो आपकी जो है वो आपका जो अपना मुहासबा है, और आप अपने आप को अपने अदालत में, अपने कटहरे में खड़ा करके जो अपना मुहासबा करेंगी, ये आपको ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देगा। जो ये गिल्ट है ना, ये जो एहसास नदामत है, ये बड़ी कीमती दौलत है। और यकीनन जब अगले दिन की आप इब्तदा करेंगी, तो फिर आप जो हैं एक नए अज़्म और नए जज्बे के साथ कि आज मुझे वो गलती नहीं करनी जो मैंने कल की थी। आयत नंबर 42 व अन्ना इला रब्बी कल मुनतहा, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है। तो ये जो आयत है ये बता रही है कि इंसान का जो है वो अंजाम क्या होगा, इंतहा क्या है, कि इंसान तुझे तेरे परवरदिगार के पास जो है वो पहुंचना है। तू कहीं भाग नहीं सकता, तू कहीं छुप नहीं सकता, फिर तू अल्लाह के पास जब पहुंचेगा तो अल्लाह ही तेरे अमाल की जांच पड़ताल करेगा, अल्लाह ही तेरा मुहासबा करेगा, फिर अल्लाह ही तेरे बारे में आखिरी फैसला करेगा। व अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा व अन्नहु हुवा अदहक व अबका, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया, उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया। इसके मानी हैं कि खुशी और गम, धूप और साए, फूल और कांटे, ये सब अल्लाह की तरफ से हैं, दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। आप देखिए कि बाज लोग जो हैं जब खुशियां मिलती हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और जब गम मिलते हैं तो बहुत नाराज होते हैं। तो यहाँ पे ये हकीकत बताई जा रही है कि किस्मत अच्छी है या बुरी है, हालात अच्छे हैं या बुरे हैं, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, कोई और नहीं है जो तुम्हारी किस्मत को बना सके या तुम्हारी किस्मत को बिगाड़ सके। तो नफा और नुकसान, रंज और गम, फायदा और नुकसान, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह की तरफ जो है वो लोगों रुजू करो। वह अन्नहु हुआ अमाता व अहया, और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी दी। इससे क्या बात पता चलती है कि जिंदगी और मौत जो है ये अल्लाह के कब्जे में है, ना कोई किसी को जिंदा कर सकता है और ना किसी को मौत दे सकता है। तो जब जिंदगी मौत भी अल्लाह के कब्जे में है तो फिर अल्लाह ही को अपना खुदा बनाना चाहिए। وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया एक बूंद से जबकि वो टपकाई जाती है। मिन नुतफतिन इज़ा तुमना, मिन नुतफतिन एक बूंद से, इज़ा तुमना जबकि वो टपकाई जाती है, जबकि वो डाला जाता है। तो अब यहाँ पर जो है ये बात बताई जा रही है कि इंसान की जो पैदाइश है ये भी अल्लाह की तरफ से है। अब आप देखें कि नून, त्वा, फा, ये नुतफे को कहते हैं, वो पानी का कतरा जिससे इंसान जो है वो वजूद में आता है, और तुमना जो है मीम नून या, इसके मानी होते हैं मनी के बाहर आने के और टपकाने के। तो नर और मादा का जोड़ा जो है ये अल्लाह ही पैदा करता है उस एक हकीर से पानी के कतरे से जबकि उसको टपका दिया जाता है। ये पहले भी आप पढ़ चुकी हैं बहुत सी पीछे सूरतों में, सूरत रूम में, सूरत अशूरा में। व अन्ना अलैहि नशअत अल उखरा, और ये कि दूसरी जिंदगी बख्शना भी उसी के जिम्मा है। अन्नश अता, इसके मानी है जिंदा करना, अल उखरा दोबारा। तो जब अल्लाह सबको पानी के एक कतरे से पैदा कर सकता है तो इंसानों को दोबारा पैदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है। तो अहले मक्का क्या कर रहे थे, वो आखरत का इनकार कर रहे थे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम्हें जरूर दोबारा पैदा करेगा, जरूर तुम्हारा हिसाब किताब होगा। व अन्नहु हुआ अग्ना व अक्ना, और ये कि उसी ने गनी किया, व अक्ना और जायदाद बख्शी, और उसी ने दौलतमंद किया, अग्ना दौलतमंद किया, गनी किया और मुफलिस कर दिया। ये जो अकना है ना, इसके मानी में बहुत इख्तलाफ है, इसके मानी में अहले लुगत और मुफस्सरीन ने इख्तलाफ किया है, कई मानी बयान किए हैं। कतादा कहते हैं कि इब्ने अब्बास ने रदियल्लाह अन्हु उन्होंने इसके मानी अर्दा, राजी कर दिया के किए हैं। अकना के मानी क्या किए हैं, राजी कर देना। अकना का मादा आप नोट कर लें, قاف نون یا پھر قاف نون حمزہ، لیکن قاف نون یا زیادہ بتایا جاتا ہے کہ قاف نون یا. تو ایک اس کے معنی ہے راضی کر دینا، دوسرے اس کے معنی ہے مطمئن کر دینا، قناعت سے ہے. تیسرے اس کے معنی ہے کہ آدمی کی حاجت سے زیادہ جو کچھ بھی اس کو دیا جائے تو وہ اقناع ہے. اور ویسے قناعت کسے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے تھوڑا بھی ہے تو اس پہ قناعت ہو، لیکن نہیں، ایک معنی اس کے اور بھی بتائے جاتے ہیں تیسرے، کہ حاجت سے زیادہ جو کچھ ہو تو اس پر انسان جو ہے پھر وہ اقناع کر لے. ایک چوتھے معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ باقی اور محفوظ رہنے والا مال، جیسے مکان، اراضی، باغات، مویشی وغیرہ. اچھا، ये तो चारों मानी हैं तो मिलते जुलते हैं ना. आप देखें कि एक में राजी करना है, एक में मुतमिन करना है कनात हो जाए, एक में जायद में कनात हो जाए, और एक में बाकी और महफूज रहने वाला माल. तो चौथों चारों मानी में गनी, दौलत, अमारत, इस तरह का तर्जमा है. लेकिन एक मानी है जो बिल्कुल हटकर है, सबसे अलग, ये इब्ने जैद ने बयान किया. वो कहते हैं अकना यहाँ पे अफकरा के मानी में है. अफकरा वो कह रहे हैं कि पिछली सारी आयात को देखें तो उनके अंदर जो है वो तजाद पाया जाता है. हंसाया, रुलाया, मौत दी, जिंदगी दी, नर और मादा का जोड़ा पैदा किया. तो यहां पे भी गनी किया और फिर गरीब कर दिया. वो अकना के मानी वो बयान करते हैं कि यहां अफकरा के हैं कि फकीर कर दिया, कि जिसको चाहा गनी किया और जिसे चाहा फकीर कर दिया. तो इख्तलाफ से फिर तर्जुमे के अंदर वुस्सत पैदा हो जाती है. और आप फिर परेशान नहीं होंगी जब आपको ये बात पता चलेगी कि बाज जो अहले लुगत हैं उन्होंने इसका तर्जुमा जो है वो गुर्बत का भी किया है और बाज ने इसका जो है वो अमारत का भी किया है. तो बहरहाल उसी ने गनी किया और जायदाद बख्शी, उसी ने गनी किया और सरमाया दिया, उसी ने गनी किया और जो है वो मुफलिस कर दिया. तो मानी ये हैं कि सब कुछ करने वाला जो है वो अल्लाह ही है. वह अन्नहू हुआ रब्बु शेरा, और वही शेरा का रब है. यहां पे इसका जिक्र क्यों किया गया है शेरा का? इसका रूट है शीन ऐन रा, ये बाल को भी कहते हैं. इसी से शायर भी है, इसी से शऊर भी है, इसी से शियार भी है. और ये जो है ये एक सितारे का नाम है. जैसे मुशरिकीन, तीन मशहूर उनकी देवियां थी, लात, मनात और उज्जा. उसके अलावा आसमान के देवताओं में से शेरा सयारा की भी वो परस्तिश करते थे, रोशन तरीन सितारा. और उसे वो याद करते थे, मुख्तलिफ नामों से याद करते थे. जैसे डॉग स्टार भी उसे कहते हैं और साइरिस भी कहते हैं. इसके बारे में आता है कि ये सूरज से 23 गुना ज्यादा रोशन है. जमीन में इसका फासला 8 साल नूरी से भी ज्यादा है, इसलिए ये सूरज से छोटा और कम रोशन नजर आता है, क्योंकि दूर बहुत है ना. और अहले मिस्र इसकी परस्तिश करते थे क्योंकि इसके तुलू के जमाने में नील जो है उसके पानी की के अंदर बड़ी फरावानी होती थी, बहुत तेजी से पानी बहता था, फिजान शुरू होता था. वो समझते थे कि ये जो सितारा है इसी के तुलू की वजह से नील का पानी जो है वो अच्छा हो जाता है. और अहले अरब में से कुरैश वाले भी और बाज खुजा के लोग, अहले कुरैश और खुजा भी इसकी परस्तिश करते थे. तो अल्लाह ताला ने इसकी भी तरदीद की है कि तुम्हारी किस्मतों का मालिक शेरा नहीं है, वो अल्लाह है जो कि शेरा का भी रब है. तो आप देख लीजिए कि यहां पे भी अल्लाह ताला एक ही बात कह रहे हैं कि ये सारे काम करने वाला जो है वो अल्लाह है. फिर आप देखें कि आयत नंबर 50 से, आयत नंबर 50 से उन कौमों का जिक्र किया है जो बड़ी अमीर थी, बड़ी दौलतमंद थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के पैगाम को झुटलाया तो वो तबाहो बर्बाद होकर रह गई. वह अन्नहू अहला का आदनिल उला, और ये कि उसी ने आदे उला को हिलाक कर दिया. तो आदे उला कदीम कौम आद, जिसकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे. ये कौम जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को جو ہے وہ جھٹلانے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی، تو صرف وہ لوگ باقی بچے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ تو ان کی نسل کو تاریخ میں آدھے اخرا یا آدھے ثانیہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ آدھے اولا کا ذکر ہے کہ اللہ ہی نے آدھے اولا کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ سمود کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْل، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کر دیا تھا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ۔ اظلمہ اور اطغا جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، تھوڑے سے عرب آپ کو میم کے اور اطغا کے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں، اطغا کے تو جو حرف علت کی وجہ سے ہیں اور اظلمہ کے فرق ہیں۔ بہرحال یہاں پہ معنی ہے سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اور سرکش لوگ۔ آیت نمبر 53 ہے سورۃ النجم۔ والمؤتفکات، والمؤتفکۃ اہوا، والمؤتفکۃ اہوا، اور اوندی گرنے والی بستیوں کو بھی جو ہے وہ اہوا الٹا پھینکا۔ اہوا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو بلندی سے نیچے گرانا۔ اس کا مادہ پڑھ چکی ہیں، ہا و یا ہے، اور یہ خواہشات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 53 میں یہ جو متفقتا ہے یہاں پہ، اور پیچھے آپ متفقات بھی پڑھ چکی ہیں، یہ کون ہیں اوندی گرنے والی بستیاں؟ یہ قوم لوط کی بستیاں مراد ہیں۔ فغشاہا ما غشا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ، کیا چھا دیا ان پر؟ تو اس سے مراد ڈیڈ سی کا پانی ہے، بحر مردار کا پانی، جو ان بستیوں کے زمین میں دھنس جانے کے بعد ان پر پھیل گیا تھا اور آج تک پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ جو انداز ہے اللہ کا فغشاہا ما غشا، تو اس میں جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب کی ہولناکی کو، اس کی شدت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ کا ان پر آیا تھا۔ کہ اللہ کے جس عذاب نے ان کو ڈھانپ دیا، وہ اس عذاب کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پس اے مخاطب، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے؟ یہ تتمارا، یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کی فیملی کے کیا لفظ آپ نے پڑھے ہیں۔ اس کا مادہ ہے میم رایا، اسی سے مریا بھی ہے۔ مریا، مریا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی لفظ جو ہے وہ شک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو میم را یا ہے شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تتا مارا، اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک شک کرنا، اور نمبر دو جھگڑا کرنا۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ اہل مکہ شک بھی کر رہے تھے قیامت کے بارے میں، اور جھگڑا بھی کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے مثالیں دیں کہ کیا اب بھی شک باقی ہے کہ ہر وہ قوم جس نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اکڑ دکھائی، آخر وہ تباہ ہو کر رہی۔ ہر وہ قوم جس نے اپنے نبی سے جھگڑا کیا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پس اے مخاطب، پھر تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر شک کرے گا؟ پھر اے مخاطب، تو آخر اللہ کی کتنی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ کب تک جھٹلائے گا؟ کیوں جھٹلائے گا؟ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ جھٹلانے کو چھوڑ کر لوگوں، تم اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور یہ جو آلا لفظ ہے، یہ اس کا روٹ ہے حمزہ لام واو، نعمتیں، احسانات، اور یہ لفظ آپ سورۃ الرحمن میں بار بار پڑھیں گی۔ اب آخری آیات ہے سورۃ النجم کی، آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 62 تک، 56 سے 62 تک۔ اور ان آیات میں एक तरफ कुरान की अजमत की याद दहानी है और दूसरी तरफ जो है अजाब का डरावा है और बंदगी की दावत है। हाजा नजीरु मिन नुजुरिल उला, ये एक तंबीह है पहले आई हुई तंबीहात में से। अब आप देख लें कि मुफस्सरीन ने इस आयत के तीन जो है वो मानी बयान किए हैं। नजीर किसे कहते हैं? वो कह रहे हैं कि यहां पर नजीर से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे हैं कि इससे मुराद कुरान है। तीसरे हैं कि इससे मुराद पिछली हिलाक शुदा कौमों का अंजाम है। तो अगर जो है प्यारे रसूल के लिए तर्जमा किया जाए तो माने ये हैं कि ये नबी भी पहले डराने वालों में से एक डराने वाला है। हाजा नजीरुन, ये है रसूल, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिनन नुजरिल उला, पहले डराने वालों में से एक। अगर ये कहा जाए कि कुरान है इसका तर्जमा, तो मानी क्या है कि ये है एक कुरान पहले डराने वाली किताबों की तरह। और अगर इसका तर्जमा जो है वो ये किया जाए कि इसके मानी हैं पिछली कौमों के अंजाम से इबरत, जो पीछे भी आपने पढ़ी है, तो मानी है ये एक तंबी है पहले आई हुई तंबीहात में से। अज़िफ़तिल आज़िफ़ा, आने वाली घड़ी करीब आ लगी है। आज़िफ़ा ये कयामत का एक नाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से कहा, मदा हाज़र नौम या आयशा, ए आयशा सोने के दिन गुजर गए। यानी अब वो जो लंबी तान कर सोने के दिन थे वो गुजर गए, अब आखरत का वक्त, क्यामत का वक्त बहुत करीब आ गया है। तो आज़िफ़ा इसका मादा है हमजा ज़ा फ़ा। इसके मानी है वक्त की तंगी का मफहूम इसमें पाया जाता है। वक्त की तंगी का मफहूम इसमें पाया जाता है कि कयामत का वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। जैसे बाज लोग होते हैं ना, कहते हैं कि इतनी क्या जल्दी पड़ी है, अभी सोचने के लिए बहुत वक्त है। जैसे फोन की ऐसी डीलें मिलती रहती हैं, अनलिमिटेड आप कॉलें कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया। और बहुत से लोग फिर क्या करते हैं कि वहां पूछते हैं कि दाल पकी है, बाहर का मौसम कैसा है, और छोटी छोटी गैर जरूरी बातें जिसका अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, ना उनको फायदा है ना आपको फायदा। उनका वक्त ज़ाया होता है, हमारा वक्त भी ज़ाया होता है, और उसी में आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं। तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं, मैं ये मिसाल इसलिए देती हूँ कि हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अनलिमिटेड हम कॉलें कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड कॉलें तो आप कर सकते हैं, पर जिंदगी कहाँ से लाएंगे, वक्त कहाँ से लाएंगे? ये छोटी सी जिंदगी, ये थोड़ा सा वक्त मिला है, इसमें मुझे आखरत कमानी है, इसमें मुझे जन्नत कमानी है, मुझे रब को राजी करना है। मूवीज में, लाहवल हदीस में, और फजूल बातों में, कामों में, बस ऐसे ही, यानी विंडो शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, फिर इधर उधर इस वक्त को जाया नहीं कर सकते। फोन ऐसे ही नहीं उठाएंगे और मिला देंगे, जरूर सोचेंगे मुझे क्या बात करनी है, और फिर बात को मुख्तसिर करना। तो बहरहाल कयामत का वक्त जो है वो बहुत करीब है, आने वाली घड़ी करीब आ लगी है। अब आप देखें, अज़िफ़त जो है ये वर्ब है, और आज़िफ़ा जो है, अल आज़िफ़ा ये नाउन है, और ये कयामत का सिफाती नाम है। तो ये मत समझो कि वक्त बहुत सा पड़ा है, वक्त बहुत कम रह गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दुनिया हुलवतुन खदेरतुन व अन अल्लाह मुस्तखलिफा कुम फीहा फयनजुरा कैफ तालमून फत्तकुद दुनिया। सही मुस्लिम की रिवायत है कि दुनिया मीठी है और सरसब्ज है, यानी बड़ी खूबसूरत मीठी बहार लगती है, और ये कि अल्लाह ने तुम्हें इसमें खलीफा मुकर्रर किया है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम कैसे अमल करते हो। लोगो, दुनिया से बचो, दुनिया में तकवा इख्तियार करो। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, अल्लाह के सिवा कोई उसको हटाने वाला नहीं है। जब कयामत की घड़ी आ जाएगी कोई उसको टाल नहीं सकता। काशिफा आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, काफ शीन फा, और कशफ का मतलब होता है परे करना, हटाना। इनकिशाफ भी इसी से है, काशिफ लोग नाम रखते हैं वो भी इसी से है। अफा मिन हाजल हदीसी ताजबून, अब क्या यही वो बातें हैं जिन पर तुम इजहार ताज्जुब करते हो? हाजल हदीस से मुराद कुरान की तालीम जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की थी, तो अहले मक्का ताज्जुब करते थे और नाकाबले यकीन समझकर कानों को हाथ लगाते थे। अल्लाह ताला पूछ रहे, अफा मिन हाजल हदीस ही ताजुबुन, अब क्या यही वो बातें हैं जिन पर तुम इजहार ताज्जुब करते हो? आज आप देखें, जब आप कुरान में से गुजरती हैं और रस्म और रवाज पर आप फिर बाद में बात करती हैं, आप कहती हैं अच्छा ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं हो सकता, तो आपके अपने और बाजू का तो आप खुद भी सोचती हैं कि अच्छा मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अच्छा ये भी नहीं हो सकता, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। वतदहकूना वला तबकून, और हंसते हो और रोते नहीं हो। अब आप देखें कि कितना खूबसूरत अंदाज है कुरान का, वतदहकूना वला तबकून, हंसते हो और रोते नहीं हो। क्या इंसान तेरी अजीब हालत है कि बजाय इसके कि तू हंसना भूल जाए, बजाय इसके कि अल्लाह के खौफ से तू रोने लगे। जैसे एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से निकले तो आपने देखा कि कुछ लोग खिलखिला के हंस रहे हैं। आपने कहा अगर तुम लज्जतों का खात्मा कर देने वाली मौत को याद करते तो कभी खिलखिला कर ना हंसते। तो तुम हंसते हो रोते नहीं हो। अन तुम सामेदून, और गा बजा कर उन्हें टालते हो। जो सामेदून है इसका रूट है सीन मीम दाल, और इसके जो है वो अहले लुगत ने दो मानी बयान किए हैं। एक मानी है कि समूद के मानी है गाना बजाना। कुफार क्या करते थे, कुरान की आवाज को दबाने के लिए, लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए जोर जोर से गाना शुरू कर देते थे। आप सूरत लुकमान में लावल हदीस के बारे में पढ़ी चुकी हैं कि नदर बिन हारिस ने क्या किया था। दूसरे समूद के मानी है तकबूर के तौर पर जो है वो सर उठाना, एराज करना, तकबूर के तौर पर जो है वो मुंह ऊपर उठाकर निकल जाना, गुस्से के साथ मुंह ऊपर उठा के निकल जाना। तो मुफस्सरीन कहते हैं फिर इस तरह सामेदून के मानी जो हैं वो गाफिलून के बयान किए जाते हैं, मोरेदून के बयान किए जाते हैं। तो वन तुम सामेदून, और गा बजा कर कुरान की दावत को टाल देते हो। अब आप भी देख लें कि कुरान की संजीदगी की दावत जो है वो आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में वो इनकलाब पैदा क्यों नहीं करती, वो हमारे घरों के अंदर हमारे घरों को जो है वो इस्लामी किला क्यों नहीं बनाती, हम अपने चंद फुट के इंसान पर इसको नाफिज क्यों नहीं करते? इसलिए कि बस हैरतज़दा हैं, लोग ये कर रहे हैं, अब हम इसको कैसे करें, मैं अकेली हूँ, सब मेरा साथ नहीं दे रहे, और ये कि कहीं टी वी है, कहीं जो है वो नावल हैं, अफसाने हैं, ड्रामे हैं, और इंटरनेट है, चैटिंग है। और अब आप देखें कि अब और तेज़ी से मीडिया आपको अपनी गिरफ्त में ले रहा है, आईफोन है, आईपॉड है, गाड़ी के अंदर भी जो है वो टीवी है, और सेल आपके साथ है, कानों को लगा दें, गाड़ी चलाते रहे। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहती हैं या नेगेटिव। वैसे ये चीज़ें बुरी नहीं हैं, अगर आप उसको दीन के लिए, अल्लाह की बंदगी के लिए इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसका जो सोसाइटी में गलत इस्तेमाल हो रहा है, अगर हम भी सोसाइटी का जो पूरी सोसाइटी जो है जो एक तरफ जा रही है, अगर हम भी उसी उन्हीं लोगों के साथ मिल जाएं तो फिर ये चीज़ें हमारे खिलाफ हुज्जत बनेंगी। तो हमें कुरान की दावत को संजीदगी से कबूल करना है। फसजुदू लिल्लाही वअबुदू, झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजा लाओ। अब आप देख लीजिए कि ये जो आखिरी आयत है सूरत अन्नजम की, इसके मानी ये हैं कि अहले मक्का कुरान की दावत को मानने की बजाय मजाक उड़ाते थे, हकीर समझते थे। अल्लाह ताला कहते हैं ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की बारगाह में झुककर उसकी इबादत अतात का मुजाहिरा करके कुरान की ताजीम करो, तौकीर करो। चुनाचे इस हुक्म की तामील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने सजदा किया, हत्ता के उस वक्त महफिल में मौजूद कुफार ने भी सजदा किया। और इस सिलसिले में जो है वो उल्मा की राय ये है कि सजदा कर भी सकते हैं और सजदा जो है अगर ना करें तो लाजिम नहीं है, क्योंकि ज़ैद बिन साबित की रवायत है کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے سورت نجم پڑھی اور پیارے رسول نے سجدہ نہیں کیا. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے نہیں بھی کیا, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ کہتے ہیں, یہ بھی بخاری کی روایت ہے, کہ حضور نے جب پہلی مرتبہ حرم میں یہ سورت تلاوت کی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلم اور کافر سب سجدے میں گر پڑے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں سورت نجم پڑھ کر سجدہ کیا, پھر اٹھ کر سورت زلزال پڑھی اور رکوع کیا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی اور نہیں بھی کیا, اور کر لے تو ثواب ہے, اجر ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں پتہ چلتی ہیں. اور یہاں پہ سجدے کے ہمارے سامنے دو معنی آئے ہیں, ایک تو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا, سجدہ عبودیت, اللہ کی بندگی کرنا, اور دوسرے اس کے معنی جو ہیں وہ جو سجدے قرآن میں آئے ہیں تقریباً 14 مقامات پر, تو وہ سجدہ بھی ہے. تو فاسجدوا للہ, پس جھک جاؤ اللہ کے آگے, وعبدوا, اور اللہ کی بندگی اختیار کرو. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین عمل کرنے والا بنائے. تو پیاری بہنوں, سورت النجم کی یہ آیات ہمارے لیے عمل کے کیا اصول پیش کرتی ہیں, آخر میں چلتے چلتے عمل کے ہم اصول جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جو آیت نمبر 30 میں آپ نے پڑھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا جو علم ہے وہ سطحی علم ہے, ذالک مبلغہم من العلم, کہ ان کا علم جو ہے وہ بہت ہی سطحی علم ہے, اور اس سطحی علم کی بنیاد پر وہ کیا کرتے تھے, وہ دنیا سے آگے بڑھ کر سوچتے نہیں تھے. ان کا مقصد پیسے کمانا تھا اور دنیا میں کامیاب ہونا. تو یہ کیا ہے, یہ جیسے شیلو نالج ہے. تو جو وہ نالج, وہ علم جو کہ صحیح علم ہے جو قرآن و سنت کا, وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے آگے اگلی زندگی ہے. تو ہمیں اگلی زندگی کی, آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے, نمبر ایک. اور آپ دیکھیں کہ میں نے اگلی زندگی کی, آخرت کی, اپنی موت کی, قیامت کی کیا تیاری کی ہے. نمبر دو, کبیرہ گناہوں سے بچنا اور اس کے ساتھ ساتھ لمم سے بھی بچنا, چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا. کبیرہ گناہوں اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں آپ نے پڑھا, تو ہمیں ان دونوں سے بچنا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ انسان جب صغیرہ گناہوں کو بھی کثرت سے کرتا ہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں, اور ہمیں اس پر جو ہے وہ کانپنا چاہیے. پھر عمل کا تیسرا اصول جس نے مجھے بہت متاثر کیا, جس میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کی مثال دی ہے, کہ جو اہل قریش تھے وہ تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نا, اور ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا, اور وہ بہت ہی مہمان نواز اور خرچ کرنے والے. تو ولید بن مغیرہ جو تھا اس نے ایک وعدہ بھی کیا, جو غلط کام وہ چاہ رہا تھا اپنے مشرک دوست سے, کہ اس کا مشرک دوست جو ہے وہ اس کے گناہوں کو قیامت کے دن اس کا بوجھ اپنے سر پر لے لے گا. تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ پیسے دے گا, لیکن وہ بھی تھوڑے سے دیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک کس دینے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا. تو آخرت کا انکار جو ہے وہ انسان کے اندر کیسا کردار پیدا کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوستی کے انسان پر بڑے اثرات ہوتے ہیں. اور عمل کا یہ اصول باندھ لیجئے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے پلو کے ساتھ باندھ دینا, اس کو باندھ دیجئے کہ جتنی زندگی باقی ہے اس میں مجھے صحبت صالح اختیار کرنی ہے, میرے دسترخوان پر نیک اور متقی لوگ آئیں, اور میں بھی, جیسے آپ کو بھی آپ کی سوشل لائف بہت عروج پر ہوگی یقیناً, کئی سالوں سے پرانے لوگ ہیں آپ یہاں رہتے ہیں اور جاب کرنے والے, تعلقات, دوستیاں, بہت سے لوگوں سے آپ کو دعوتیں ملتی ہوں گی, اور آپ ان ساری دعوتوں پہ بعض اوقات نہیں پہنچ پاتے نا. تو آپ ضرور اس وقت یہ فیصلہ کریں کہ مجھے کون سی دعوت قبول کرنی ہے. اچھا, اگر وہ لوگ جو نیک نہیں ہیں اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, جب ان کے پاس جائیں تو ضرور یہ سوچیں کہ میں نے اپنی نیکی کا اثر وہاں چھوڑ کر آنا ہے, ان کے گناہوں کا اثر لے کر ساتھ نہیں آنا. ان کے گناہوں سے, ان کی بے حیائی سے, ان کی فضول چیزوں سے, اور ان کی دنیا میں جو ڈوبے ہیں وہ لوگ, اس سے میں نے متاثر ہو کر نہیں آنا ضرور. और जाने से पहले अपना जायजा लिया करें ईमान का, और आने के वक्त भी अपना जरूर जायजा लिया करें कि मुझे मिला क्या, हुआ क्या। ये नहीं कि एक डब्बा आप जाते हुए ले जाए और आते हुए कोई चीज आपको मिल जाए। तो एक अमल का असूल हमें ये पता चलता है कि सोहबत सवाले, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने शोहर के लिए भी, और अल्लाह से सोहबत सवाले मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू मुझे सोहबत सवाले दे दे। और सहाबा जो थे वो सोहबत सवाले की तलाश में रहते थे और बहुत उसके लिए फिक्रमंद होते थे सोहबत सवाले के लिए। फिर अमल का एक उसूल जो सामने आता है कि किसी इंसान को किसी का अमल फायदा नहीं दे सकता। कुरान में अल्लाह ताला बार बार कहते हैं तो मुझे दुनिया में जिंदगी में हुस्ने अमल करने हैं और सदका जारिया करना है, ऐसे अमल जो मुझे फायदा दे जाए। जैसे मैं अपने बारे में सोचती हूँ, बहुत समझ नहीं थी जब मैं एफए में थी, तो हालांकि हम माशाल्लाह 7 बहन भाई थे और मेरे अलावा सब ने साइंस पढ़ी हुई है। अब इत्तफाक है कि जब वाले साहब जो थे वो एयरफोर्स में थे और गवर्नमेंट ने उनको सऊदीया भेजा, वहां पे वो कैडेट्स को पढ़ाते थे एयरफोर्स में से, तो वहां पे सऊदीया में पढ़ाते थे। तो मैं कुछ देर अपनी दादी के पास रही थी और उस वक्त वहां पे स्कूल में गांव में साइंस के सब्जेक्ट नहीं थे। तो फिर उसके बाद वहाँ आर्ट्स थी, तो मैंने 9th 10th आर्ट्स में कर ली। और जब मैं फिर अब्बा जान ने शहर में घर ले लिया और हम फिर शहर शिफ्ट भी हो गए, सब बातें, फिर अब्बा जान बहुत ही इसके कायल थे कि साइंस आर्ट्स के भी कोई सब्जेक्ट होते हैं तो साइंस पढ़नी चाहिए। तो फिर मुझे तो इतनी समझ नहीं थी, मैंने कहा जो जैसे आप लोगों की मर्जी, वरना फिर मुझे रिपीट करवाते वो दोबारा 9th 10th। तो फिर मुझसे पूछा कि क्या आपका क्या मशवरा है, मैंने कहा जैसे आप लोग जो भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो मैंने कहा ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर मेरी बड़ी बहन ने, जब मैं एफए में आई, मुझे उन्होंने होम इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन रखवाई। तो होम इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आप कपड़े सीखते हैं कि कपड़े कैसे काटते हैं, कैसे सिलाई करते हैं, फिटिंग चीज़ें, और साथ ही आप उसमें जो है वो खाना पकाना सीखते हैं। फिर जो फिजिकल एजुकेशन थी उसमें तो दौड़े लगाते हैं, बस एक एजुकेशन सब्जेक्ट था। तो और हालांकि मेरी जो बड़ी बहन थी उन्होंने मुझे अरबी रखवाई, तो अरबी की टीचर पहले दिन ही जब मैं गई तो उसने माजी की गर्दान लिखा दी और मैंने कभी अरबी पढ़ी ही नहीं थी। तो बड़ी बहन ने कहा, अल्लाह वो फौत हो गई, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये तुम पढ़ लो। और वैसे हमारे घर में कभी ज़बरदस्ती नहीं करते थे, अब्बा जान कहते थे मूवी देखने की भी इजाज़त है और सब कुछ करने की इजाज़त है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने बस नेकी की तरफ मुझे माइल कर दिया और मैं नहीं जाती थी, दोस्त जाते थे और बड़े हैरान होते थे कि इसको मूवी देखने की भी इजाज़त है, बाजार जाने की भी इजाज़त है। और अब्बा जान उस वक्त भी सऊदीया थे तो मैं हॉस्टल में भी कुछ दे रही, तो मैं नहीं जाती थी। बस पता नहीं अल्लाह की तरफ से जब अल्लाह ताला किसी को नेकी की तरफ लाता है। तो मैं बात करी थी कि मैंने जब वो देखा कि पहले दिन ही टीचर ने ग्रामर शुरू कर दी और मुझे आती नहीं थी, दिल तो चाहता था लेकिन मैंने कहा ये मुझे टीचर पसंद नहीं आई। मेरी आपी ने मुझे समझाया भी लेकिन उसने कहा जबरदस्ती नहीं, जो तुम चाहो। मैंने कहा नहीं, फिजिकल एजुकेशन अच्छी है, सारे लोग, इतनी बड़ी उनकी क्लास होती है, सारे इंजॉय करते हैं, मैं फिजिकल एजुकेशन में चली गई। फिर उसके बाद जो है वो आप ही ने कहा अच्छा चलो ठीक है, एजुकेशन एक अच्छा सब्जेक्ट है अब तुम्हारे पास, तुम इसको फिर आगे लेके चलना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखेंगे। जब मैं बीए में आई और मुझे उर्दू लिटरेचर बड़ा पसंद था, मैंने फिर जो है वो उर्दू लिटरेचर ले लिया। और अच्छा उस दौरान मेरे मुझे मेरी सोचों में फ़र्क आ चुका था, कुरान को तर्जमा तफसीर से मैं पढ़ चुकी थी। और अब मैंने इतनी मैं उदास हुई, इतनी उदास हुई, इतना मैं रोई कि अब मैं अरबी में बीए में अरबी लेना चाहती हूँ और वहाँ पे दाखला नहीं मिलता, और मैं चाहती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में लूँ जो पूरे पंजाब की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ दाखला लेना है और दाखला नहीं मिल सकता इसलिए कि मेरे सब्जेक्ट ही वो नहीं है, जब पढ़ा ही नहीं तो बीए में कैसे दाखला मिल जाए। मैंने कहा अल्लाह ताला, फिजिकल एजुकेशन में जाती हूँ तो मुझे, मैं खेलती रहूँगी मेरी ज़िंदगी में, ये मुझे फ़ायदा नहीं देगा। होम इकोनॉमिक्स में जाऊँगी, कपड़े सीती रहूँगी, बहुत अच्छे कपड़े सी लिए और बहुत अच्छा खाना पका लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहती। उर्दू लिटरेचर भी मुझे बहुत पसंद था लेकिन उर्दू लिटरेचर में शायरी बोलती रहूँगी, इससे मुझे क्या, बस नहीं मुझे कुरान पढ़ना है और अब मैं कुरान को समझना चाहती हूँ, बस मुझे अरबी में दाखिला चाहिए और पंजाब यूनिवर्सिटी में चाहिए। अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने मुझे दिया और बहुत अल्लाह ताला ने दिया, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकती, लेकिन जो चीज़ दिल से मांगी जाती है ना अल्लाह ज़रूर देता है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पहले दिन ही मेरे लिए जो डिफरेंट सब्जेक्ट थे दूसरे, उसमें मेरा पहले दिन पहली लिस्ट में नाम आ गया था। फैसलाबाद में भी आ गया था, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में अरबी में पहले दिन नाम नहीं आया, दूसरे दिन नाम नहीं आया, बस तीसरे दिन आखिरी लिस्ट लगनी थी और बस मैं रो रो के दुआ मांग रही थी। और तीसरे दिन अरबी जबान के अंदर मेरा बीए में, बी नहीं बीए में नहीं, एमए में, मतलब मुझे एमए करना था क्योंकि बीए में भी मैंने अरबी तो नहीं पढ़ी थी इस तरह, तो मेरा वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए में बीए एमए में अरबी में मेरा एडमिशन हो गया। और आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरी खुशी का क्या हाल था। मुझे कुछ नहीं आता था अरबी का, कुछ नहीं आता था, बस तर्जमा तफसीर से कुरान पढ़ लिया था, लेकिन कुछ समझ नहीं थी। बस एक जैसे इश्क दीवानगी तो थी, पर समझ नहीं थी कि क्या करना है ना। और जब मैं पार्ट वन में थी, कोई मेरे साथ स्टडी नहीं करना चाहता था। सारा दिन यही, वैसे मुझे कुरान और दर्स और इसका शौक भी बहुत था, दूसरों की मदद करना, हॉस्टल में लोग रोते बहुत हैं, उनके मसाइल हल करना, सारी चीज़ों में लगी रहती। और पार्ट वन में मैंने लड़कियों में टॉप किया था यूनिवर्सिटी में, एमए अरबी में पार्ट वन में टॉप किया था अल्लाह की तौफीक से। और एमए फिर मैंने, और सेकंड ईयर जब मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में एमए का था अरबी का, तो लोग कहते थे कि हम आपके साथ स्टडी कर सकते हैं। वक्त हालात फिर ऐसे बदल जाते हैं। और ये क्या है, हाजा मिन फतले रब्बी। और वाकई अगर आप कोई मिशन बना लें और उसके लिए संजीदा हो जाए, तो मैं ये सोचती थी कि मैं वो डिग्री लेना चाहती हूँ जो मेरी दुनिया भी बना दे, मेरी आखिरत भी बना दे। और मैं समझती थी कि मुझे एमए करते ही अरबी आ जाएगी और ग्रामर आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, लेकिन वो सफ़र अभी तक जारी है और मेहनत करने में अभी भी लगी हुई हूँ कि ये आराब क्यों बदलते हैं, तो मानी क्यों बदलते हैं, तो अल्फाज की शक्ल क्यों बदलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दिल चाहता है कि अब दाखला मिला होता तो फिर पता नहीं हम मैं क्या करती, लेकिन अभी भी नीयत है इंशाल्लाह। ज़िंदगी सेहत रही तो हो सकता है एमफिल, पंजाबी एमफिल या पीएचडी, जो भी अल्लाह ताला तौफीक दे दें। और असल तो काम यही है कि सीखना है और सिखाना है। तो बात क्या थी कि असल अमल का उसूल फिर हमें क्या लेना है कि वो काम करना है जो हमारी आखिरत संवार दे, वो दोस्तियाँ जो हमारी आखिरत संवार दें। तो बात तवील हो गई और वक्त कलील है, तो बाकी जो है वो इसाले सवाब के बारे में भी आपको तफसील से आपके सामने रखा, आपने देख लिया कि किन चीज़ों में उल्मा मुत्तफिक हैं, किस में इख्तलाफ है। और जो भी इख्तलाफ की बात होती है ना प्यारी बहनों, इसमें कभी जो है वो जो इख्तलाफी बातें होती हैं ना, उसको टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाकर उसमें शिद्दत नहीं इख्तियार करते। मुझे और आपको कुछ आता नहीं है, ठीक है, मैं आपको वो बताती हूँ जो मुझे उलमा से पता चलता है। तो फिर करना क्या है कि जो इख्तलाफी बातें हैं ना, उसमें जिन चीज़ों में उलमा में इख्तलाफ है, उसमें मैं और आप क्या करेंगे, तो उसमें जो है फिर हम देख सकते हैं कि जमहूर की राय क्या है, ज़्यादातर राय क्या है, और फिर उसके मुताबिक हम अपनी अमली ज़िंदगी को संवारें। तो अल्लाह ताला मुझसे और आपसे राज़ी हो और हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।